ಆತಿಥ್ಯನ ಸಾಧು ಮೇತಿಲಾಸೃತ ದೇವಶ್ಚ ಯುಗಪನ್ ಸಂಗತಾಂಜಲಿ. ತೋ ದೋನೋ ಮೇ ಕೋಯಿ ಏಕ ದೂಸರೆ ಕೋ ನೀ ದೇಖ ಪಾ ರಹಾ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ತದಭಿಪ್ರೀತ್ಯ ದ್ವಯೋ ಪ್ರಿಯ ಚ ಕೀರ್ಷಯಾಂ ಉಭಯೋ ರಾವಿ ಸಂಗೇಹಂ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ತದಲಕ್ಷಿತಾಂ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಖಾ ಹೈ ಶ್ರೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಕೃಷ್ಣ ಏಕ ಹಿ ಸಮಯ ದೋ ರೂಪೋ ಮೇ ಪ್ರಕಟ ಹೋಕರ್ ಮುನಿಯೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಶ್ರುತದೇವ್ ಔರ್ ಬಹುಲಾಸು ಕೆ ಯಹಾಂ ಗಯೆ. ಇಸ್ ತರಹ ಬಹುಲಾಸು ನೆ ಸೋಚಾ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ ಉಸಿ ಕೆ ಘರ್ ಆಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಶ್ರುತದೇವ್ ಕೋ ನಿರಾಶ ಲೋಟಾ ದಿಯಾ ಹೈ. ಜಬಕಿ ಶ್ರುತದೇವ್ ನೆ ಇಸ್ಕೆ ಠೀಕ್ ವಿಪರೀತ ಸೋಚಾ. ತೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಮೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾಲ್ ಲಿಖತೆ ಹೈ ಯದ್ಯಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಔರ್ ರಾಜಾ ಯೆ ಸೋಚ ರಹೆ ಥೆ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೇವಲ ಉನ್ಕೆ ಹೀ ಘರ್ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ ಕಿಂತು ಭಗವಾನ್ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಸಂಗೀ ದೋನೋ ಹೀ ಘರೋ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಥೆ. ಯೆ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಏಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೈ ಇಸೆ ವೈಭವ ಪ್ರಕಾಶ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನೆ 16,000 ರಾನಿಯೋ ಸೆ ವಿವಾಹ ಕಿಯಾ ತೋ 16,000 ರೂಪೋ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಿಯಾ. ಹಾಂ ಔರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೀ ನೆ ಜಬ್ ಬೃಂದಾವನ್ ಮೇ ಉನ್ಕೆ ಗೌ ಮೇ ಬಛಡೆ ಚುರಾಯೆ ತೋ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಅಪ್ನಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಿಯಾ ಸಬ್ ಗಯೆ ಬಛಡೋ ಔರ್ ಬಾಲಕೋ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ವಿಸ್ತಾರ ಕರ್ ಲಿಯಾ. ಅಬ ಹಾಂ ತೋ ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಕಿ ರಾಜಾ ಬಹುಲಾಸು ನೆ ಜಬ್ ದೇಖಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಹುತ್ ದೂರ ಸೆ ಮುನಿಯೋ ಸಹಿತ ಆಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಥಕೆ ಹುವೆ ಹೈ ಯಾತ್ರಾ ಸೆ. ಹಾಂ ತೋ ತುರಂತ ಆಸನ ಮಂಗಾಯಾ ಔರ್ ಸಬ್ ಮುನಿಯೋ ಕೋ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಬಿಠಾಯಾ ಔರ್ ರಾಜಾ ಕಾ ಹೃದಯ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಸೆ ಭರಾ ಹುವಾ ಥಾ ಔರ್ ನೇತ್ರ ಅಶ್ರುವೋ ಸೆ ಭರೆ ಥೆ. ರಾಜಾ ನೆ ಸಬ್ ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಸಾಥ ಸಬ್ ಕೆ ಚರಣ ಧೋಯೆ ಔರ್ ಫಿರ್ ಉಸ್ ಧೋವನ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಅಪ್ನೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಛಿಡಕಾ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಸಬ್ ಪರಿವಾರ ಕೆ ಸದಸ್ಯೋ ಪರ್ ಛಿಡಕಾ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಸುಗಂಧಿತ ಚಂದನ್ ಲೇಪ್ ಫೂಲ್ ಮಾಲಾಯೆ ಸುಂದರ ವಸ್ತ್ರ ಆಭೂಷಣ ಅಗುರು ದೀಪಕ್ ಔರ್ ಗೌವೆ ಭೇಟ್ ಕಿ ಸಬ್ ಋಷಿ ಮುನಿಯೋ ಕೋ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ. ಶ್ರಾಂತಾನ್ ಅಪ್ಯಥ ತಾನ್ ದೂರಾನ್ ಜನಕಾ ಸ್ವಗೃಹಗತಾನ್ ಆನೀತೆ ಸ್ವಾಸನಾಂಗ್ರೇಸು ಸುಖಾಸೀನಾಂ ಮಹಾಮನಾಂ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಉದ್ಧರಸೆ ಹೃದಯಾಸ್ತ್ರ ವಿಲೇಕ್ಷಣಾಂ ನತ್ವಾ ತದಂಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ತದಪೋ ಲೋಕ ಪಾವನೀಂ ಸಕುಟುಂಬೋ ವಹನ್ ಮೂರ್ಧನಾ ಪೂಜ್ಯಾಂ ಚಕ್ರೆ ಈಶ್ವರಾಂ ಗಂಧ ಮಾಲ್ಯಾಂ ವರಾಕಲ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪಾರ್ಘ್ಯ ಗೋವೃಷ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮೇ ಲಿಖಾ ಹೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಟೀಕಾ ಹೈ ಕಿ ವಿದೇಹರಾಜ ಬಹುಲಾಸ ಬಹುತ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಥೆ ಭಗವಾನ್ ಸಹಿತ ಇತನೆ ಮಹಾಪುರುಷೋ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ದೇಖಕರ್ ಕೆ ಬಹುತ್ ಚಕಿತ ಹೋ ಗಯೆ. ಉನ್ಕೋ ಭಲಿ ಭಾಂತಿ ಜ್ಞಾತ ಥಾ ಕಿ ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಾಯೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕಾರ್ಯೋ ಮೇ ಸಂಲಗ್ನ ಹೈ ತೋ ಕಭಿ ಶುದ್ಧ ನೀ ಹೋ ಪಾಯೆಂಗೆ. ಜಬಕಿ ಭಗವಾನ್ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕಲ್ಮಸ್ ಸೆ ಪರೆ ಹೋತೆ ಹೈ. ಅತೇವ್ ಜಬ್ ಉನ್ಹೋನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಮಸ್ತ ಋಷಿಯೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉನ್ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಹೈ ತೋ ಬಹುತ್ ಚಕಿತ ಹುವೆ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ದೇನೆ ಲಗೆ. ಆಪ್ನೆ ಇತ್ನಿ ಕೃಪಾ ಕರಿ ಆಪ್ ಮೇರೆ ಘರ್ ಮೇ ಆಯೆ ಹೈ. ಫಿರ್ ಜಬ್ ಜೀ ಭರ್ ಕರ್ ಕೆ ಭೋಜನ್ ಕರ್ ಚುಕೆ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ತೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಚರಣೋ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಗೋದ್ ಮೇ ರಖಾ ಔರ್ ಸುಖ ಪೂರ್ವಕ ದಬಾತೆ ಹುವೆ ರಾಜಾ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಮಧುರ ವಾಣಿ ಮೇ ಬೋಲ್ನೆ ಲಗೆ. ಭಗವಾನ್ ಊಂಚಿ ಆಸನ್ ಪರ್ ಬೈಠೆ ಹೈ ತೋ ಪೈರ್ ಜೊ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಜೊ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಥೆ ತೋ ರಾಜಾ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಬೈಠ ಕರ್ಕೆ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪೈರೋ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಗೋದ್ ಮೇ ರಖ ಕರ್ಕೆ ಔರ್ ದಬಾತೆ ಹುವೆ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ ರಾಜಾ. ವಾಚಾ ಮಧುರೆ ಆ ಪ್ರೀಣನ್ ಇದಂ ಆಹಾನ್ನರ್ಪಣ ಇದಂ ಮಹಾನ್ನ ತರ್ಪಿತಾಂ ಪಾದಾವಂಕಗತಾಂ ವಿಷ್ಣು ಸಂಪ್ರಸಂಚನ ಕೇರ ಮುದಾಂ. ಅಬ್ ಬಹುಲಾಸು ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಹೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಪ್ರಭು ಆಪ್ ಸಮಸ್ತ ಜೀವೋ ಕಿ ಆತ್ಮಾ ಹೈ ಔರ್ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೈ. ಅಬ್ ಆಪ್ ಹಮ್ ಸಬೋ ಕೋ ಜೊ ನಿರಂತರ ಆಪ್ಕೆ ಚರಣ ಕಮಲೋ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಅಪ್ನಾ ದರ್ಶನ್ ದೇ ರಹೆ ಹೈ. ಭವಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಆತ್ಮಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವದೃಂಗ್ ವಿಭೋ ಅಧನಸ್ತತ್ಪದಾಂ ಭೋಜಂ ಇಸ್ಮರತಾಂ ದರ್ಶನಂ ಗತಾಂ. ಆ ಅಬ್ ಆಪ್ನೆ ಕ್ಯೋ ದರ್ಶನ್ ದಿಯಾ ಹೈ ಹಮಕೋ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಆಪ್ನೆ ಹೀ ಕಹಾ ಹೈ कि मेरे अनन्य भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, शेष जी और लक्ष्मी जी से और ब्रह्मा जी से भी ज्यादा प्यारे मेरे भक्त हैं, आपने स्वयं कहा है। इसलिए अपने इस वचन को सत्य करने के लिए आप यहाँ आए हैं, मेरे पास आए हैं। स्वचस्तन नृतम कर तुम अस्मंद्रिंग गोचरो कांत भक्ता में नानंता श्री रजा प्रिया। ऐसा कौन पुरुष है जो इस सत्य को जानते हुए कभी आपके चरण कमलों का परित्याग करेगा। जब आप उन शांत मुनियों को अपने आप को भी दे डालते हैं जो किसी वस्तु को अपना नहीं मानते हैं, हाँ, तो जब शांत मुनियों को आप सब कुछ दे डालते हैं अपना, तो कौन व्यक्ति है जो इस बात को जान करके आपके चरण कमलों को छोड़ेगा। कौन चरणाम भोजम एवं पुमानाम शांतानाम मुनीनाम यस्तुमात्मदहा। आपने युद्धवंश में अवतार लिया है और तीनों लोगों के समस्त पापों को दूर करने वाला अपना यश फैलाया है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुओं का उद्धार करने के ही लिए आप अपना यश फैला रहे हैं। योवतीर्य यदोर वंशे नृणाम संसरताम यशोविते ने तच्छांत त्रैलोक्य वृजिनापहम। कितना सुंदर, अपने यश को आप फैला रहे हैं, क्यों? जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए पतितों का उद्धार करने के लिए आपने अपना यश फैलाया हुआ है। हे भगवान कृष्ण, आपको नमस्कार है, आपकी बुद्धि सदैव ही असीम है। ऋषि नर नारायण को नमस्कार है जो पूर्ण शांति में रहकर सदैव तपस्या करते हैं। नमस्तुम्यं भगवते कृष्णाय कुंतमेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतं तपेयुषे। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि नर नारायण ऋषि की बात क्यों करी कि आप नर नारायण ऋषि हैं, क्योंकि नर नारायण ऋषि तो जंगल में तपस्या करते हैं, तो आप द्वारका जैसे शहर को छोड़ करके हमारे शहर में आए हैं जो जंगल के समान है। मिथिला नगर जो है वैसे तो बहुत सुंदर शहर है, लेकिन द्वारका की तुलना में तो जंगल है। तो राजा जो है चाहते हैं कि आप यहाँ कुछ दिन रहो, क्यों? क्योंकि नर नारायण तो जंगल में रहकर के ही तपस्या करते हैं, तो आपके लिए ये जंगल ज्यादा ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं नर नारायण भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार से उन्होंने मतलब चाहा कि मिथिलापुरी में भगवान रहे, ये जंगल है। हे सर्वव्यापी कृपया इन ब्राह्मणों समेत मेरे घर में कुछ दिन ठहरिए और अपने चरणों की धूल से मेरे वंश को पवित्र करिए। दिनानी कत जन्मोमन गृहान्नो निवसे द्विज समेत पादे रजसा पुनीहितम निमेकुलम। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा के द्वारा इस प्रकार जब प्रार्थना की गई तो भगवान जगत के पालन करता जो भगवान है, उन्होंने मिथिला की स्त्री पुरुषों का सौभाग्य बढ़ाने के लिए कुछ दिन ठहरना स्वीकार कर लिया। सौभाग्य बढ़ाने के लिए, सौभाग्य तो बहुत था ही, सब शुद्ध भक्त हैं मिथिला के स्त्री पुरुष सब, है ना, तो उनका और सौभाग्य बढ़ाने के लिए भगवान वहां पर ठहर गए। इत्तिपा मंत्रित और आज्ञा भगवान लोक भावना वास कुर्वन कल्याणम मिथिला नरे योषिताम। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में वहां भी भगवान है, तो श्रुतदेव ने अपने घर में भगवान अच्युत का उतने ही उत्साह के साथ स्वागत किया जितना उत्साह था राजा बहुलाशो का। भगवान और मुनियों को नमस्कार करके श्रुतदेव हर्ष से नाचने लगा, अपना दुशाला हिला हिला करके, अपना वस्त्र हवा में हिला हिला करके नाच रहा है। उसके पास तो और स्वागत की कोई सामग्री नहीं है, उसके पास तो और सब कुछ जो है विधि विधान नहीं है, कि कैसे स्वागत करे भगवान का, है अकेला है अपने घर में, तो सब ऋषि मुनियों का स्वागत कैसे करता है, है? अपना कपड़ा हिला करके और नाचता है, है? मेरे घर में भगवान आए हैं। श्रुत देवो चुतम प्राप्तम स्वगृहां जनको यथा नत्वा मुनीन्द्र संघृष्टो धुन्वन्वा सो ननर्थसहा। अब उसने भगवान को क्या दिया, उसके पास तो कुछ बड़े बड़े सोफा नहीं थे जैसे राजा बहुलासु के पास थे, तो क्या किया, जो चटाइयां हैं तिनके से बनी हुई चटाइयां हैं वो लाया, घास की चटाइयां लाया, उनमें भगवान को बिठाया, मुनियों को बिठाया, और स्वागत के शब्दों से सत्कार किया, और उसकी पत्नी ने भी पैर धोए भगवान के, ब्राह्मणों के पैर धोए, पैर तो धोए जा सकते हैं, पानी खाली पानी से पैर धो दिए, हाँ, और उस धोवन को वही काम किया जो राजा भोलासु ने किया, भगवान के और सब ऋषि मुनियों के पैरों का धोवन है, वो क्या किया, अपने ऊपर छिड़का, अपने घर पर छिड़का, अपने परिवार वालों पर छिड़का, और हर्षित होकर के अनुभव किया कि अब सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो भगवान है ना, निर्धन ब्राह्मण है, है तो चाहता तो मांग लेता भगवान से, महल बड़ा महल मांग लेता, राजपाट मांग लेता, क्या नहीं मांग सकता था, लेकिन इसमें संतुष्ट हो गया कि भगवान मेरे घर में आए और मैंने उनके पैर धोए और वो धोवन अपने सिर में डाल लिया, इतने से अपने को कृतार्थ मानता है कि मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। तदम बसा महाभाग आत्मान संग्रहण वयम स्नापयाम चक्र उन्धर सो लंब सर्व मनोरथ। और अब पूजा की सामग्री जो प्राप्त हो जाए निर्धन व्यक्ति को, क्या फल और अमृत के समान जल, बड़ा शुद्ध जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, कुसा और कमल के फूल, ये निःशुल्क मिल जाते हैं किसी भी निर्धन को। और फिर उस भोजन परोसा जो सात्विक भोजन है, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन तो नहीं थे लेकिन जो भी सात्विक भोजन है वो उसने परोसा, जो कि सामान्य जो निर्धन व्यक्ति खाता है ये सात्विक भोजन शुद्धता से बनाया। फलारहणो शीरे सेवामो भीरविन मृदा सुरम्या तुलसी को सामुजे आराधया मास यथोपपन्नया सपरिया सत्व विवर्धनानंद साम। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कि मैं अंधेरे कुएं में गिरा हुआ, कैसे भगवान मेरे पास आए, मैं तो गृहस्थ जीवन के अंधेरे कुएं में गिरा था, भगवान कृष्ण कैसे मेरे पास आ गए और इतने महान ऋषि मुनि भी मेरे घर में आ गए, जो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इनके चरणों की धूल में सब तीर्थ हैं, ये सब ऋषि मुनि जो आए हैं मेरे घर में कैसे आ गए, ऐसा मेरा सौभाग्य इतना बड़ा कहाँ से हो गया, ऐसा सोचता है। सतर्क आमास कुतो ममान भगून गृहान कूपे पतितस्य संगम या सर्व तीर्थास्पद पाद रेणु भी कृष्ण न चाश्यात्म निकेत भूसुरे। अब भगवान और उनके अतिथि सब सम्मान प्राप्त करके सुखपूर्वक बैठ गए, भोजन पूरा हो गया, तो श्रुतदेव उनके पास गया, अपनी पत्नी बच्चे और सब परिवार को साथ में बिठा लिया, उनके आश्रित में निकट में बैठ गया और भगवान के चरणों को दबाते हुए कृष्ण को बोलने लगा, जैसे राजा बहुलासु बोलते हैं उसी प्रकार से बोलता है। सोपविष्टान कृतादित्यान श्रुतदेव उपस्थित सभार्य स्वजनापत्य वाचांग्र विमर्शनः। अब श्रुतदेव ने क्या कहा, कि आज हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि परम पुरुष के हमें आज दर्शन प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना की है और फिर अपने दिव्य रूप से इस ब्रह्मांड में आप प्रविष्ट हुए हैं। नादिनो दर्शनम प्राप्तम परम परमे पुरुषम शक्ति सृष्टवा प्रविष्टो यात्म सत्यम। तो हे प्रभु, आप ऐसे सोए हुए व्यक्ति की तरह हैं, जो अपनी कल्पना में ही पूरे जगत का निर्माण करता है और अपने स्वप्न में प्रवेश करता है, उसके भीतर अपने को ही देखता है। हाँ, बहुत बढ़िया ये उदाहरण है। क्या कह रहे हैं कि भगवान आपने जो है ना इस जगत का निर्माण कैसे किया है, जैसे कोई भी सोया हुआ व्यक्ति है सपने में ही सब कुछ बना लेता है और उस सपने में वो स्वयं जो है ना प्रवेश करता है और स्वयं जो है ना पूरी दुनिया सपने की दुनिया वो बनाता है, अपने आप बनाता है। तो ये आप जो है ना आपने जो पूरी दुनिया बनाई है इसी प्रकार से आपने बनाई है, अपने सपने से बनाई है। यथा शयाना पुरुषम मन से आत्म माया दृष्ट्वा लोकम परम स्वप्नम अनुविश्यावभासते। इसको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये वास्तव में सपने जैसा ही ये जगत एक भ्रम हो, नहीं, सत्य है ये जगत तो सत्य है। लेकिन जो भगवान की माया शक्ति के अधीन होते हैं और भगवान की सेवा के रूप में जो माया है, माया जो है भगवान की सेवा के रूप में बद्ध जीवों को असली मानने के लिए भ्रमित कर रही है। वास्तव में भगवान जो है ये सब जो पूरा संसार बनाया है ये अपने सपने से बनाया, ये भगवान का सपना भी तो वास्तविक है, समझना चाहिए। भगवान का सपना भी तो सत्य है, तो भगवान परम सत्य है ना। लेकिन फिर भी जो इस संसार को भोगना चाहते हैं उनके लिए जगत क्या है, मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वो भोग नहीं पा रहे हैं, गलत है। इसलिए तो सुखदेव कह रहे हैं आप उन शुद्ध चेतना वाले मनुष्यों के हृदयों के भीतर अपने को प्रकट करते हैं जो निरंतर आपके विषय में श्रवण करते हैं, जो निरंतर आपके विषय में श्रवण करते हैं उनके हृदय के भीतर आप अपने को प्रकट कर देते हैं। जो आपका कीर्तन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं और आपके विषय में एक दूसरे से बातें करते हैं, उनके शुद्ध हृदय में ही आप प्रकट होते हैं। श्रृणवताम गदताम सरस्वन अर्चिताम वंदताम नलाम संवदताम अंतर हृदय भाष्य मलात्मना। किंतु हृदय के भीतर बास करते हुए भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं जिनके मन भौतिक कार्यों में उलझे रहते हैं। निसंदेह कोई भी आपको भौतिक शक्तियों के द्वारा पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप केवल उन लोगों के हृदय में प्रकट होते हैं जो आपके दिव्य गुणों की प्रशंसा करते हैं। हृदयस्थो प्रति दूरस्ताम कर्म विक्षिप्त चेतसाम आत्मशक्ति निरग्रायो प्यंत्योपेत गुणात्मनाम। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप परब्रह्म हैं, परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं और काल रूप में आप जीवों के लिए मृत्यु स्वरूप हैं। अपने आध्यात्मिक रूप में आप इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और अपने भक्तों की आंखें खोलते हैं और भक्तों की आंखों को बंद करते हैं। नमोस्तुते अध्यात्मे विदाम परात्मने अनात्मने स्वात्मे विभक्त मृत्य वे सकारणा कारण लिंग मी उसे सुमाया समृद्ध रुंद दृष्ट ये। हे प्रभु, आप ही वह परमात्मा हैं और हम आपके दास हैं, हम आपकी किस प्रकार सेवा करें। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य जीवन के सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। आपका दर्शन हमें हुआ अब तो हमारे सब कष्ट मिट गए अपने आप, हमें कुछ आपसे मांगना नहीं है। सतुम साधे सुभृत्यान्ना किम देवे करवामहे एतदंतो नृणाम क्लेशो यद भवान अक्षी गोचरः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव के ये शब्द सुनकर के शरणागतों के कष्ट दूर करने वाले भगवान क्या करते हैं, सुखदेव का हाथ अपने हाथ में लेकर के हंसते हुए इस प्रकार बोलते हैं, तदुक्तम नित्योपाकरण भगवान प्रणतार्थिहा गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रहसंतम वाचः। भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण, तुम ये जान लो कि ये महामुनि यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं, ये मेरे साथ सारे जगत में भ्रमण करते हैं और अपने चरणों की धूल से पूरे जगत को पवित्र करते हैं। ब्रह्मन्ते नुंग्रहान थाएं संप्राप्तान विद्यमान मुनी संचरन्ति मया लोकान पुनंता पादे रेणु भी। तात्पर्य लिखा है श्रील श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि श्रुतदेव ने मेरा तो बहुत आदर किया किंतु उन मुनियों का इन मुनियों का उतना आदर नहीं किया, इसलिए श्रुतदेव का ध्यान इन ब्राह्मणों की तरफ मोड़ते हैं मुनियों की तरफ। और भगवान क्या कहते हैं कि देखो अर्चा विग्रह की पूजा से तो बहुत दिनों में कोई व्यक्ति शुद्ध होता है, या तीर्थों का तीर्थों में स्नान करने या पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत दिनों में कोई व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु महान मुनियों की कृपा दृष्टि मात्र से ही वो फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। जो शुद्ध भक्त हैं साधु हैं उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति तत्काल बहुत लंबे समय का फल प्राप्त कर लेता है। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्श नार्चन समय पुनंती कालेन तदप्यर्हतमे क्षया। ब्राह्मण अपने जन्म से ही इस जगत में समस्त जीवों से श्रेष्ठ है, किंतु वह और भी उच्च बन जाता है जब तपस्या विद्या और आत्मसंतोष से युक्त होता है। ब्राह्मण जन्म से ही पवित्र है लेकिन और श्रेष्ठ होता है जब तपस्या विद्या और संतोष से युक्त हो, और यदि मेरे प्रति उसकी भक्ति हो तो फिर तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनां तपसा विद्या तुष्ट्या किमु मत्कलयां। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मणों की तुलना में मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी अधिक प्रिय नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान, मेरा जो चतुर्भुज रूप है वो भी उतना प्यारा नहीं है जितना ब्राह्मण प्यारे हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में सारे वेद उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार मेरे भीतर सारे देवता रहते हैं। न ब्राह्मणान मे दयितम रूप में तन चतुर्भुज सर्व वेद मयो विप्रह सर्वदेव मयो यहां। अब तात्पर्य में लिखिए, तात्पर्य में देखिए क्या लिखा है कि भगवान को केवल वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है और वेदों को प्रकट करने वाले ब्राह्मण हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण यद्यपि समस्त देवताओं के जो है मूल तत्व हैं लेकिन तो भी ब्राह्मणों को अपने से बढ़कर के मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही कोई व्यक्ति भगवान को जान पाता है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे से बढ़कर के ब्राह्मण है। देखो भगवान की कैसी दया। और अब भगवान क्या कहते हैं, इस सत्य को ना जान करके जो मूर्ख लोग हैं वो विद्वान ब्राह्मण की उपेक्षा करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं बल्कि ईर्ष्या के कारण अपमान करते हैं। मतलब विद्वान ब्राह्मण जो भगवान का उपदेश देने वाला है उसको उसका जो है सम्मान नहीं करना ये बहुत बड़ी मूर्खता है भगवान कहते हैं, और फिर अपमान करना तो और भी बड़ी मूर्खता। जो मुझसे अभिन्न होने के कारण उनका आत्मा और गुरु है, जो विद्वान ब्राह्मण है वो सबका आत्मा भी है और सबका गुरु भी है, क्योंकि तो भगवान है, भगवान का संदेश दे रहा है, इसलिए वे मेरे अर्चा विग्रह को ही एकमात्र पूज्य मानते हैं। ये मूर्ख है, भगवान कहते हैं ये मूर्ख हैं जो अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं और विद्वान ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते हैं। दुष्प्रज्ञा अविदित्वेवम अवजानं तस्योयमहं गुरुं मां विप्रमात्मानं अर्चादा विद्यादृष्ट्या। मेरा साक्षात्कार होने के कारण ब्राह्मण इस ज्ञान में दृढ़ रहता है कि ब्रह्मांड की सारी जन और चेतन वस्तुएं सब कुछ मेरा ही प्रकट रूप है। चराचरम मिदम विश्वम भावाये चासे तवाम मद्रूपाणी चेतस्या दत्ते विप्रो मदीक्षयाम। अतः हे ब्राह्मण तुम्हें चाहिए कि इन ऋषियों की पूजा उसी श्रद्धा से करो जितनी तुम्हारी मुझमें है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करोगे, हाँ, नहीं तो अन्यथा बहुत धन धन की भेंट करके भी तुम वो फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर तुम बहुत धन भी अगर मुझे दो तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, हाँ? जितना प्रसन्न होऊंगा कैसे, इन ब्राह्मणों की पूजा करने से। तस्मान् ब्रह्म ऋषि नेतान् ब्रह्मन् मच्छिन्द्रियाचयम् चेदर्जितोऽस्म्यथा नान्यथा भूरि भूतिभिः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने प्रभु से इस प्रकार आदेश पाकर श्रुतदेव ने एकात्म भाव से श्री कृष्ण की और उनके साथ आए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की। राजा बहुनास ने भी ऐसा ही किया। इस तरह श्रुतदेव और राजा दोनों को ही चरम दिव्य वरदान प्राप्त हुआ। सैतम प्रभुणादिष्टा सह कृष्णान द्विजोत्तमा आराध्य एकात्म भावेन मैथिलश्चापे संगतिम। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, इस तरह अपने भक्तों के प्रति अनुरक्त भगवान अपने दो महान भक्तों श्रुतदेव और बहुलासु के साथ कुछ समय तक उन्हें पूर्ण संतों के आचरण की शिक्षा देते हुए रहे, तब भगवान द्वारका लौट गए। देखो भगवान ने कितनी दया, श्रुतदेव के घर में भी रहे भगवान कुछ दिन तक, राजा बहुलासु के घर में भी रहे, और कितना आश्चर्य, ये ऋषि मुनि भी दो बन गए। जितने ऋषि मुनि भगवान के साथ थे तो ये भी एक साथ भगवान के साथ हैं, मतलब राजा के घर में भी हैं और भिखारी के घर में भी हैं। एवं सुभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान पुषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वार वती मगान। तात्पर्य में लिखा है कि श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण पुस्तक में इस लीला का वर्णन किया है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, हम इस घटना से शिक्षा पाते हैं कि भगवान ने राजा बहुलास और ब्राह्मण श्रुतदेव का एक ही स्तर पर स्वागत किया या सम्मान किया, क्योंकि दोनों ही विशुद्ध भक्त थे। भगवान द्वारा सम्मान प्राप्त करने की योग्यता यही है। क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर झूठा गर्भ करना आज के युग का प्रचलन हो गया है, हैं? जैसे राजा क्षत्रिय हैं तो ऐसे क्षत्रिय बनना चाहिए, और जो श्रुतदेव ब्राह्मण है ऐसे ब्राह्मण बनना चाहिए, नहीं तो ऐसे क्या है, हम क्षत्रिय हैं हम ब्राह्मण हैं, तो ऐसे परिवार में जन्म लेकर के भी कोई योग्यता नहीं है। अथवा अतएव हम पाते हैं कि जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता के ना होते हुए लोग ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य होने का दावा करते हैं, किंतु जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, कलो शूद्र संभवा, इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होता है। इसका कारण संस्कार नामक शुद्धिकरण की विधियों का संपादन नहीं होना है, जिनका शुभारंभ माता के गर्भधारण से होता है तथा जो व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जन्मजात अधिकार के आधार पर किसी विशेष वर्ण, विशेष रूप से उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण के सदस्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यदि गर्भाधान संस्कार द्वारा किसी का शुद्धिकरण नहीं किया जाता तो उसे तत्काल ही शूद्रों में माना जाता है, क्योंकि केवल शूद्र ही शुद्धिकरण नहीं करते। कृष्ण भावनामृत की शुद्धिकरण प्रक्रिया से रहित इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय तृप्ति के लिए शूद्रों अथवा पशुओं की गर्भाधान प्रक्रिया ये क्या है, बेकार है, किंतु कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च सिद्धि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। इसमें समस्त ब्राह्मण की योग्यताओं से युक्त होना भी सम्मिलित है। वैष्णवों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वे चारों प्रकार के पाप कर्म से मुक्त हो सके। चार प्रकार के पाप कर्म क्या हैं, अवैध यौन, मादक पदार्थों का सेवन, जुआ खेलना और मांसाहार। इन प्रारंभिक योग्यताओं के बिना कोई भी ब्राह्मणत्व के स्तर पर नहीं रह सकता, और योग्य ब्राह्मण बने बिना वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाना शीर्षक 86वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो इस अध्याय में 59 श्लोक थे, हमने पूरा अध्याय पढ़ा है। अब किसी का कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि मैंने बोला है कि ब्राह्मण जो है पैदा होते हैं शूद्र के रूप में, नहीं मैंने ये नहीं कहा। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलो शूद्र संभवा, कलयुग में चूंकि संस्कार नहीं होते हैं इसलिए सभी जन्म से शूद्र होते हैं, ठीक है ना, संस्कार नहीं है, है ना, गर्भाधान संस्कार होता है ना, फिर जन्म संस्कार होता है, इस प्रकार की मृत्यु पर्यंत संस्कार चलते रहते हैं। संस्कार के बिना जो है कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बन सकता, शूद्र ही होता है, शूद्रों में कोई संस्कार नहीं होते हैं। लेकिन फिर शूद्र के रूप में जन्म लेकर के भी कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, कलयुग में विधि है, तो कोई व्यक्ति जो है ना भक्ति योग की विधि का पालन करके अपने को सत्वगुण पर उठा सकता है, सत्वगुण के धरातल पर कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, और फिर सत्वगुण से ऊपर जब उठता है तो फिर वो वैष्णव बनता है, भगवान का भक्त बनता है। तो ये भक्तियों की विधि इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी व्यक्ति शूद्र के धरातल से ऊपर उठ सकता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे।